कोई और है जो बदल रहा है जहन को, कोई बेवकूफ तो बनाता है ना कि इंसान अपने जैसे इंसानों के आगे झुकने लगता है, उनको ज्यादा अहमियत देने लगता है, वो जहां से सब कुछ आ रहा है वो उसको पीछे कर दिया उस जात को, जबकि आसमान और जमीन से रिस्क तो वही दे रहा है। तो सबसे ज्यादा उसका एहसास होना चाहिए ना, अरे कहीं वो नाराज ना हो जाए। हम बॉस से ज्यादा डरते हैं, अल्लाह से ज्यादा बॉस से डरते हैं, अल्लाह से ज्यादा पुलिस से डरते हैं। अल्लाह अकबर। और पता है यहां से ये भी चला कि कभी भी नियमतों की निस्बत अपनी तरफ ना करें। जी मैंने बड़ी मेहनत की थी, दिन रात की जी मेरी मेहनत है, मैंने जी बड़ी कुर्बानी दी थी, हाँ जी मैंने बड़ा कुछ किया था इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला, नहीं। और इससे क्या पता चला कि इबादत के लायक फिर सिर्फ अल्लाह है, क्योंकि ला इलाह इल्लाह, फिर इबादत भी तो उसी की करो जब मानते हो कि हाँ उसी ने ये सब कुछ दिया है, कोई और नहीं कर सकता। और काफिर भी मानते थे कि खालिक तो अल्लाह ही है, तो फिर इलाह कभी फरिश्तों को, कभी पीरों फकीरों को, कभी वलियों को, कभी नबियों को क्यों बनाते हो? वो तो सब मोहताज हैं, उनको भी सब उसी तरह जरूरत है जैसे कि बाकी मखलूक को जरूरत है, वो भी उसी तरह मोहताज हैं, उनको भी मौत जिंदगी रिस्क देने वाला अल्लाह ही है। तो जब नेमते सब अल्लाह देने वाला, तो फिर इलाह कोई और कैसे हो गया? जो पहले पूरी नेमतों को कहा गया याद करो, इंसान याद करने लगता थक ही जाता है, इतनी काउंटलेस नेमतें, फिर उसका दिल भर जाता है कि यार ये कितनी नेमतें, किसने ने दे दी मुझे इतनी नेमतें, तो फिर आ गया वो अल्लाह ही तो है, उसके सिवा और कौन हो सकता। और उसके बाद फिर जब ये बात इंसान ने मान ली, तो फिर अब इलाह तो कोई और नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा। तो इसलिए इंसान समझ ले कि झुकना है तो अल्लाह के आगे, और शुक्र है तो सारा अल्लाह के लिए, नजरो नियाज है तो अल्लाह के लिए, दुआएं करनी है तो अल्लाह के आगे, पुकारना है तो अल्लाह को। और अगर तुम समझते हो कि इबादत के लायक कोई और भी है, तो पहले ये साबित करो कि उन्होंने क्या दिया है तुम्हें, उन्होंने क्या पैदा किया। वह इन युकज़िबू का, और ए नबी अगर ये आपको जुटलाते हैं, फ़कद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्ली का, तो इससे पहले भी, आपसे पहले भी कई रसूल जुटलाए गए, क़ब्ली का आपसे पहले, यानी आपके आने से पहले देखें तारीख इंसानी भरी पड़ी है, जब जब रसूल आए, तो हम तो कुरान में भी पढ़ चुके हैं कि लोग क्या करते रहे, झुटलाते ही रहे, मुखालफत ही करते रहे, किसी ने भी रसूलों को फूलों के हार तो नहीं पहनाए, किसी ने भी उनके आगे जो है ना वो रेड कारपेट नहीं बिछाए कि अल्लाह के रसूल आए हमारे पास पैगाम लेकर आए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, किसी ने भी नहीं ऐसा किया। वइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, सारे काम तो अल्लाह की तरफ लौटाए जाने वाले हैं, सारे मामला तो फिर अल्लाह ताला ने वहां पे फैसला कर ही देना। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर गमगीन होते थे ना कि ये क्यों नहीं मान जाते, कि क्यों नहीं, ये क्यों इतनी मुखालफत पे तुले पड़े, तो उनको बताया गया कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, इंसान को फिर तसल्ली हो जाती ना कि मेरे साथ कोई यूनिक केस नहीं है, पहले भी ऐसे ही होता रहा। इंसानियत की सरिश्त यही रही है, इंसानों का हमेशा से आदत यही रही है, उनको बुरे लगते हैं वो लोग जो उनको हक की तरफ बुलाएं, उनको बुरे लगते हैं वो लोग जो उनको उनकी मर्जियां ना करने दें, जो उनको एक ऐसी लाइफ की तरफ बुलाएं जो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शन है ना इसके अंदर कि नहीं ये करना और ये नहीं करना। इंसान चाहते हैं कि मन मानियां करें, और ये शैतान का रास्ता है। इंसान चाहते मुझे कोई ना बताए मैंने क्या करना, मुझे कोई कहने वाला ना हो, मेरा जो दिल करे वो मैं पहनूं, मेरा जो दिल करे वो मैं खाऊं, मेरा जैसे दिल करे वैसे मैं कमाइयां करूं, मेरा जिधर दिल चाहे उधर मैं खर्च करूं, मैं। तो वो बुत तो कुछ बोलते ही नहीं थे ना कुछ कहते थे इनको, तो वो अच्छे नहीं लगे। अब इंसान के अंदर ये तो अर्ज होती है कि मैं किसी के आगे झुकूं, मैं किसी को आगे अपने आप को सुपुर्द करूं, ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली है। तो अब वो झुकना तो उसने है, अब लेकिन ऐसी जात के आगे झुक जाते ना कुछ कहे ना कुछ, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बस जो मर्जी करते रहो और बस खुदा भी कोई बना लिया। तो तो दिल को भी तसल्ली दे दी कि हाँ एक हमने खुदा बनाया हुआ, और मर्जी भी अपनी करती। तो वो खुदा क्या हुआ जिसकी तुमने कोई माननी नहीं है, जो ना बोलता है ना तुम्हें कुछ कहता है, ना तुमसे कोई डिमांड करता है, ना कुछ तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्टेड लाइफ की तरफ बुलाता है, ना तुम्हें कोई हलाल हराम का बताता है, ना तुम्हें कोई रहनुमाई करता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कैसे खुदा है जो जो इनसे कोई बात नहीं करते, इनको कुछ भी नहीं कहते। तो अल्लाह ताला तो वो है जो हमें बताएगा कि सही रास्ता क्या है, जो हमें रहनुमाई करे, गाइड करे इस जिंदगी के अंदर। तो उनको गाइडेंस चाहिए ही नहीं ना किसी और से, वो अपनी नफ्स से गाइडेंस चाहते हैं। जो लोग भी गैर अल्लाह को पूछते हैं वो अपने नफ्स से गाइडेंस चाहते हैं, वो अपने नफ्स की पूजा असल में करते हैं। दिल किया तो इसके आगे झुक गए, दिल किया तो इसको छोड़ के दूसरे के आगे झुक गए, तो वो कोई उनकी बेस नहीं है। तो लिहाजा इंसानों को हमेशा से, कोई ऐसा नहीं कि रसूलों से कोई कोई ज़ात उनको बुरी लगती थी, नहीं, ज़ात नहीं उनकी बुरी लगती थी कभी भी, उनका पैगाम बुरा लगता था। और यही कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि नबी इनको आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको वो आयात प्रॉब्लम देती हैं जो अल्लाह की तरफ से उतरी हैं। अल्लाह का पैगाम नहीं अच्छा लगता क्योंकि इस पैगाम के अंदर इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। क्या आज भी ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि हम मुसलमान अपने आप को कहला के भी वो करना चाहते हैं जो हमारी मर्जी है। वहाँ मुसलमान का टैग भी लगा रहे और साथ मर्जियां भी अपनी चलती रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो भी वही तो फिर काफरों का भी मसला था ना, वो कहते थे बस हम अपनी मर्जियां हमें करने दो, जो हम चाहते हैं वैसे हम चलते हैं, हमें कुछ करने को ना कहा जाए या कुछ छोड़ने को ना कहा जाए। और रसूल छोड़ने को कहते थे, नहीं भाई ये आपने नाप तोल सही करनी है, आपने फसाद नहीं करना जमीन में, आपने लोगों को उनके हक देने हैं, कितने कुछ कहते थे ना, आपने ये कौमे लूट वाला अमल नहीं करना, कितनी बातों से मना करते थे। तो ये बातें उनको कोई अच्छी लगती थी, इसलिए उनको रसूल बुरे लगते थे, वरना ऐसे नहीं था कि उनको उनकी ज़ात से कोई मसला था। शुएब अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम के अंदर बहुत बल्कि बड़े माने जाते थे, और वो कहते थे हमें तो आपसे बड़ी उम्मीदें थी कि आपने तो बड़ा हमारा नाम रोशन करना, तो आप ये किधर लग गए। तो उनको कभी भी पैगंबरों की ज़ात से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, और ना ही नबी अलैहिस्सलाम से कभी भी मुशरिकीन मक्का को उनकी पर्सनल उनके उनकी लाइफ से कोई प्रॉब्लम था। हाँ उनकी रिसालत से प्रॉब्लम था, वरना तो उनको सादिक और अमीन कहते थे, पसंद करते थे तो कहते थे। लेकिन जिस वक्त ये पैगाम आया तो ये पैगाम नहीं हमने सुनना, और आज भी प्रॉब्लम पैगाम के साथ है लोगों को। ये पैगाम जो है ये उनको रिस्ट्रिक्ट करता है ना, ये पैगाम उनको कहता है कि नहीं ये इस तरह नहीं चलना, तुमने ऐसे चलना, तुमने ये नहीं करना, उससे मना करता है। अब वो हमें बात अच्छी नहीं लगती, मना करे तो हमें कोई करे कैसे, हमने तो बस जो मेरा दिल करेगा वो करूँगी। जब हमारे रवैये ये हैं तो हमें क्या अच्छा लगेगा कुरान का पैगाम। इसीलिए तो फिर हम इसको सीखने के लिए नहीं आते, क्योंकि हमें पहले ही डर जाते। किसी को बुलाओ ना तो उनके दिमाग में सबसे पहले खासतौर पर खवातीन के तो ये आता है कि हाय अल्लाह पता नहीं मुझे बुरका ही पहना देंगे, ये मैं तो ऐसी ही हो जाऊंगी जैसी ये खुद है जो मुझे आके बता रही हैं, हाय हाय मुझे भी ये हिजाब लेने पड़ेंगे, अबाए पहनने पड़ेंगे, मैं भी इस तरह की हो जाऊंगी बैकवर्ड सी। सबसे पहले ये दिमाग के अंदर आता है, शैतान ये लाता है ना तुम ऐसे हो जाओगे, मत जाओ कुरान की तरह। तो ये पैगाम है जो ही तो उस वक्त भी प्रॉब्लम था लोगों के लिए और आज भी यही है। इसी वजह से 100 दफा हमसे कुरान पढ़वा लो, इतलावते करा लो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक दफा भी समझने का कह दो तो बहुत प्रॉब्लम है। मजा ही रूट कॉज क्या है, ये वजह है क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते, अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। वी आर हैप्पी विद वॉट वी आर डूइंग, हम सेटिस्फाइड हैं, हमें चाहिए ही नहीं गाइडेंस। गाइडेंस कौन हमें देगा जी, हम खुद इतने गाइडेड हैं। जो अपने आप को गाइडेड समझे, जो समझे मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, वो क्या गाइडेंस लेगा किसी से। गाइडेंस तो वो लेता जो कहता है नहीं मुझे मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं पता, अल्लाह तू मुझे समझा दे, अल्लाह तू मुझे चला दे, अल्लाह अपने जन्नत के रास्ते पे ले आ मुझे, अल्लाह हिदायत का रास्ता दिखा दे, अल्लाह सिराते मुस्तकीम की मुझे तलाश है, मेरे रब मुझे उसके ऊपर चला दे। जिसके अंदर ये तड़प होगी वही तो कहेगा कि मुझे बताओ, हाँ मुझे समझना है, हाँ मैं तो कब से इसकी तलाश में थी, और जो मुतमईन है अपनी लाइफ में, जो डजंट केयर, जन्नत का रास्ता क्या है वो हमें क्या क्या होता फिर, हमारी तो दुनिया ही जन्नत है, वो फिर क्यों आएगा इस तरफ। अल्लाह अकबर। तो ठीक है, इल्लाह ही तो रजाउ उमूर, अल्लाह ही की तरफ लौटने हैं सारे, फिर मामलात लौटाए जाने हैं, वहां पे फैसले हो जाएंगे सबके। आज नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं ये बातें पसंद आती, वो प्रॉब्लम, कल को किधर जाओगे भाग के, अल्लाह ताला के सामने तो खड़े होना है ना, फिर अल्लाह ताला खुद ही उनसे निपट लेगा। फिर या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, फिर पूरी इंसानियत को खिताब, पहले भी पूरी इंसानियत के साथ बात की गई है, काफिर है या मोमिन है, सब लोग, और अब भी सारी इंसानियत को क्या कहा जा रहा है, इन्ना वादल्लाही हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला का तो हर वादा सच्चा है, उसकी तो हर बात सच्ची है, वो वादा ना भी करे, वो बात कह दे, तो उसकी हर बात हक है। लेकिन यहां पर खास तौर पे किस वादे की बात की जा रही है, आखरत का वादा, जी उठने का वादा, कि जो दोबारा जी उठना है। देखिए हम वो जो तहज्जुद के बाद हम पढ़ते हैं ना, वादुकल हक, अल्लाहुम्म लकल हम्दु अंतल हक ववादुकल हक वलिकाउका हक, तो वो क्या है उसमें कि अल्लाह तेरा वादा हक है, अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, हम अपने आप को याद दहानी कराते हैं, तेरी मुलाकात अल्लाह सच है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच है, लिकाओ का हक व कौलू का हक, अल्लाह तेरी बात सच, व जन्नत हक, अल्लाह तेरी जन्नत हक है, ना व नारू हक, व नबीयू ना हक, व मोहम्मद हक, व सात हक, इतना कुछ हम अपने आप को याद कराते हैं, असल में भूल जाता है ना ये, क्योंकि यहीं पे अभी बात आ रही है कि ये वादा ही तो भुलाना का शैतान को सबसे ज्यादा ये उसका मिशन है कि वो इस वादे को ही भूल जाए, कि दोबारा जी के मर के दोबारा जी उठना है, और उसके अंदर सजा और जजा है, और उसके अंदर हिसाब और किताब है, और जन्नत है और जहन्नुम है और पुल सिरात है, तो ये सब चीजें और हमेशा की है ये, फिर तो ये वादा है अल्लाह का, इसके बारे में कभी शक ना करना, इसके बारे में कभी सेकंड थॉट ना आए कि मरने के बाद जिंदगी है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो ना धोखे में डाल दे तुमको दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, दो चीजें हैं जो धोखे में डालने वाली हैं, वो दोनों यहाँ पे मेंशन कर दी गई, एक दुनिया की जिंदगी और दूसरा शैतान। गरूर यहाँ पे किसको कहा गया, धोखेबाज कौन है, शैतान। बी अवेयर, जैसे बोर्ड लगा दिया जाता है ना, बी अवेयर ऑफ दिस, बी अवेयर ऑफ डॉग, और ये मोहतात रहिएगा, तो मोहतात रहना किस चीज से, धोखा ना खा जाना। मैंने आपको बताया गुरूर क्या है, किसी को गाफिल पाके अपना मकसद पूरा करना। कोई है जो इस चीज का वेट करता है कि आप गाफिल हो तो वो आपको उचक के ले जाए, वो कौन है, एक तो वो दुनिया की ये जिंदगी है और एक है वो शैतान। दुनिया की जिंदगी कैसा धोखा है, उसका धोखा ये है कि कैसे आपको धोखा देती है, कि दुनिया की नेमतें, इसकी लज्जतें, इसकी जेबो जीनत, इसकी रंगीनियां, ये इतनी स्वीट है कि आप इसके अंदर, आपसे सलम ने फरमाया ना, दुनिया सरसब्ज और मीठी है ना, तो वाकई वो इतनी स्वीट है, इतनी ज्यादा इसके अंदर इंसान गर्क हो जाता है, इतनी इसके अंदर जिसको कहेंगे कैपेसिटी कह लें, या इसका धोखा ऐसा है कि इंसान अपने जैसे दलदल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो उसके अंदर इंसान अगर पैर रखता है उसको पता नहीं होता, वो पैर धसता जाता है, अंदर ही डूब जाता है पूरा पूरा इंसान। दुनिया भी ऐसे ही है, ये भी दलदल है कि इंसान इसके अंदर गर्क हो जाता है, और इसके अंदर गर्क होके वो अपनी आखरत से गाफिल हो जाता है। और धोखेबाज शैतान भी क्या चाहता है, धोखेबाज जो है वो शैतान है ना, उसका धोखा क्या है कि इंसान बिल्कुल आखरत को भूल जाए, इतना उलझ जाए इसी शबो रोज के अंदर, इसी दुनिया के झंबेलों के अंदर, इन्हीं काम काज में इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये काम वो काम वो, इतना कुछ इसके अंदर है, इतनी सारी चीजें इसके मामलात में इतना उलझा रहे कि उसको याद ही ना रहे कि वापसी भी है, उसको याद ही ना रहे कि उसकी तैयारी भी करनी है, उसको याद ही ना रहे कि वो है मेरा गोल, ये गोल नहीं है, उसको याद ही ना रहे कि मेरा मकसद है जन्नत, मैंने उसके रास्ते पे चलना, उसको याद ही ना रहे, इतना ज्यादा इसके अंदर मशगूल हो जाए, इतना बिजी हो जाए इसके अंदर, इतना ज्यादा अपनी तवज्जो का मरकज इसको बना ले, ये है इस दुनिया का धोखा। और ये शैतान है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं है कि कोई नेक है तो उसको छोड़ दे, कोई स्कॉलर है तो उसको छोड़ दे, कोई वलीउल्लाह है तो उसको छोड़ दे, हर एक के पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह के पैगंबरों के पीछे भी पड़ता है लेकिन उनको अल्लाह बचा लेता है, लेकिन बाकी आम इंसान जो है सबके पीछे शैतान पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जहां उसकी कमजोरी होती है वहां से ही उसको पकड़ता है। तो इंसान को फिर जब उलझा लेता है, अब आप काफरों को तो देख लें, दुनिया ही उनका मतमा नजर है, दुनिया 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 दुनिया, उनको तो होश ही नहीं है। अब जो मुसलमान है उसको भी ये शैतान ने धोखेबाज ने ऐसा धोखा दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, भला उसने इतनी इतनी बातों पर पकड़ लेना, तो भला उसने इस पर तो मेरी पकड़ कर लेनी, हिसाब कर लेना, कोई नहीं, वो गफूर रहीम है, तुम तो बच ही जाओगे। नेकियों को बढ़ा करके दिखाता है, गुनाहों को हल्का करके दिखाता है, गुनाहों को मुजयन करके दिखाता है, ख्वाहिशात के अंदर उलझाए छोड़ता है, ख्वाहिशात एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इंसान इतना अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला हो जाता है, एक ख्वाहिश पूरी होती दूसरी सर उठा लेते, दूसरी पूरी होती तीसरी सर उठा लेते, एक घर लिया है मेरा घर हो जाए, घर हो जाए चाहे एक कमरे का हो जाए, लेकिन बस सर छुपाने की जगह मिल जाए, एक कमरे का घर मिले, नहीं नहीं एक कमरे का नहीं, दो का तो होना चाहिए आखिर, एक बच्चों के लिए भी हो, अच्छा दो का भी मिल गया है, अच्छा ये तो काफी नहीं है, मेरे ख्याल एक मेहमानों का भी तो होना चाहिए, तीन तो होनी चाहिए, अब तीन का भी मिल गया नहीं, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ज्यादा जाहिर है मेहमान आ जाते हैं, बच्चों को भी अलग अलग कमरे चाहिए, फिर जरा इंसान कुशादगी के साथ तो रहे, खुला घर हो ना वो बड़ा अच्छा है, उससे भी बड़े की ख्वाहिश, यानी कहने का मकसद ये किसी चीज में, तो एक एग्जांपल है ना, किसी चीज में भी दिल भरता ही नहीं, ख्वाहिशात तो खुजली की तरह है, जितना खारिज करते जाएं खारिज बढ़ती जाती, इसी तरह ख्वाहिशात है, इंसान एक ख्वाहिश पूरी करता है उसके पीछे भागता है तो दूसरी सर उठाती, दूसरी करता है तो तीसरी सर उठाती, ये ऐसे ही है दुनिया की जिंदगी, जैसे शराब होता है, शराब को आप देखते हैं ना, शराब में क्या होता है, सामने नजर आता है आपको कि पानी है, आप उस पानी की तरफ जब चलते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, प्यासा क्या समझता है, पानी पानी भागता है, वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता, फिर उसको समझ आती है तो शराब था। दुनिया की जिंदगी भी ऐसे ही है, एक ख्वाहिश दूसरी दूसरी ख्वाहिश तीसरी, बस इंसान कहता है ये बस पूरी हो जाए ना फिर देखना, मेरी तो खुशियां ही खुशियां, फिर सकून ही सकून है, फिर बस मैंने, फिर मैंने आराम से बैठ जाना, फिर बस मैंने अल्लाह अल्लाह करना है, लेकिन क्या होता है उसके बाद भी नहीं होता। आप देख लेना जैसे कई लड़कियों को पूछ ले, बस शादी हो जाए ना, पहले तो बस मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए ना, बस फिर मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ये फिर उसके बाद नहीं, शादी हो जाए ना उसके बाद बस मैंने नेक बन जाना, मैंने हिजाब भी शुरू कर देना, मैंने वो करना है, मैंने ये करना, शादी भी हो गई, नहीं 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 अभी तो बहुत बिजी हूँ, अभी तो नहीं मेरे से, तो अभी तो शादी के ही मामला नहीं खत्म हो रहे, अब बच्चे पैदा हो गए, अब क्या करूं, अब तो मेरे पास और भी मसरूफियत हो गई, नहीं 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 जरा बड़े बड़े हो जाए तब, वो तो कभी ये चीज खत्म होती ही नहीं, ये दुनिया इस तरह अपने अंदर मशहूल इतना गर्क कर देती है ना, यकीन करें इंसान कहता है कि कहां मैं जाऊं, जब वक्त होगा ना तब मैं नेक बनूंगा, वक्त तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि दुनिया ने अपने आप में इतना मशगूल कर लिया हमें, हमने इसको ही अपना गोल बना लिया, अपना मतमा नजर बना लिया, कहा गया अल्लाह के वादे पे यकीन करो वो आने वाला है वादा, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, अल्लाह ताला फरमाते वो तुम तो उसको दूर देखते हो वो तो करीब है, क्या पता मौत अगले ही लम्हे आने वाली हो,
तुम्हें लगता नहीं बड़ी दूर है, अभी तो दज्जाल भी नहीं आया, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, बड़ा टाइम है हमारे पास, और अगले लम्हे पता नहीं होता कि अगले लम्हे ही सांस खत्म होने वाली है। अल्लाह अकबर। तो इंसान को पीछे ये धोखेबाज भी पड़ा हुआ है, और दुनिया भी इतनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दुनिया में टेम्पटेशन है, इसकी लज्जतें कहीं तुम्हें आखरत की लज्जतें, ये इसकी तो टेम्परेरी है ना, इसमें भी लज्जत है, टेम्परेरी है, इसकी टेम्परेरी लज्जतें कहीं तुम्हें आखरत की परमानेंट लज्जतें ना भुलवा दे कि तुम जन्नत ही भूल जाओ। इसके मसाइल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आखरत के मसाइल ही भुलवा दे। हाय मसले बड़े, फिक्रें बड़ी हैं, और जहन्नम की भी फिक्र कभी करी, वहां पे हिसाब किताब की भी फिक्र कभी करी, अल्लाह के आगे खड़े होने की भी परेशानी कभी करी, इस तरह वो भूल गई सारी ये फिक्र ही सारी हमें लेके बैठ गई, हमने इन्हीं के ऊपर इतनी बीमारियां लगा ली अपने आप को, उन फिक्रों के ऊपर तो हमने कभी सोचा ही नहीं जो वहां आगे की है। सोचे जरा, ये है इस दुनिया का धोखा, ये आगे से आगे हमें ना चलाई जाती, जैसे कोई कोई चीज लेके खड़ा हो, हम वहां तक भागे, वो फिर वो और आगे नजर आने लगे, वहां तक भागे, फिर और आगे नजर आने लगे, वहां तक भागे, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, और भागते ही भागते इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये दौड़ खत्म नहीं होनी, ये दौड़ नहीं कभी खत्म होनी कि आप कभी कहें कि हाँ अब मुझे आराम मिल गया जी, अब तो मैं बिल्कुल फारिग हो गई, अल्लाह ताला तेरे लिए मैं फारिग हो गई, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ का धोखा यही तो है, इसमें ग्लैमर है, शो है, चमक है, दमक है, ये अपने अंदर गुम कर लेती है। कभी कभी जब मॉल जाने का इत्तेफाक हो, खासतौर पर ये हॉलीडे सीजन वगैरह में, आप देखें वाकई मैं तो देख के सोचती हूँ यही है वो दुनिया जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये अपने अंदर कितना मशगूल कर लेती, इंसान को पता ही नहीं चलता, पूरा दिन भी गुजर जाए, इतनी चमक दमक, जूते हैं तो उनके अंबार लगे हुए हैं, बेडिंग के सेक्शन में चले जाओ उसके अंबार लगे हैं, कपड़ों में जाओ तो कपड़े ही खत्म नहीं होते, या अल्लाह कितना कुछ है। तो ये फिर शैतान कहता है बस इसके अंदर ही लगे रहो, बस यही है बस सब कुछ, यही के गम सब गम है, यही की खुशियां सब खुशियां हैं, यही के जो जीत है वो जीत है, यही की हार हार है, यही की कामयाबी सबसे बड़ी चीज है, यही की नाकामी सबसे बड़ा गम है। तो आखरत के मामले में तो इतना इंसान को बेफिक्र करके रख देता है ना कि वहां पे तो बख्शिश ही बख्शिश है, वहां पे तो तुम्हारा थोड़ा सा अमल भी कबूल हो जाना। देखो हर एक को एक हदीस तो जरूर आती है, किसी से भी पूछ लो, चाहे उसको कुरान हदीस का कुछ ना पता होगा ना, उसको भी ये पता है बहुत ही, एक कुत्ते को तो बख्शिश हो गई थी औरत की, वो कुत्ते को पानी पिलाने पे, तो अब बंदा दिमाग के अंदर क्या सोच के बैठ जाता है, बस मेरी भी तो इसी तरह ही हो जानी, मैंने भी शायद कभी किसी कुत्ते को पानी पिला ही दिया होगा, मैं तो इंसानों को पिला दिया। फिर इंसान को ऐसा वो यही तो धोखा है ना, ऐसा धोखा देता है कि गुनाह की वजह से कोई बात नहीं करते जाओ, इस तरह थोड़ी अल्लाह ने पकड़ लेना, आखिर वो गफूर रहीम है कि नहीं है, तो बस, तो अगर उसने उस दिन ना माफ किया तो व्हाट इफ, ये दूसरा तो कभी सवाल आता ही नहीं ज़हन में ना, 100% जैसे हमने अल्लाह ताला से लिखवाया हुआ, हम लकुम किताब उन तदरुसूना फिहा, तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो ये कि हम वहां पे सारों को बराबर कर देंगे, तुम जैसे मर्जी काम करके आ जाओ, अफा नजर मुस्लिमीन कल मुजरिमीन सूरह कलम में है, तुम पढ़ते हो कोई किताबों में, अल्लाह ने तुमसे वादे कर रखे, तुम्हारी तो 100% बख्शिश है, तुम 100% तुम्हारी ये जन्नत है 100% वाले, लेकिन हम सब जितने भी हम लोग हैं ना, तमाम के तमाम लोग, इवन गैर मुस्लिम भी, सब ये सोचे बैठे हैं कि हमारे लिए तो जन्नत ही है, रेस्ट इन पीस, उसके वो भी कहता पीस में ही रेस्ट, तू जो जो तेरी तो सुकून ही सुकून है, यहाँ मर के इसको सुकून मिल गया, जन्नत तो इसके लिए ही। और मुसलमान तो माशाल्लाह पक्की समझते हैं, उनके लिए तो पक्की पक्की है, वो तो कोई मसला है ही नहीं, उनका तो बिल्कुल ही उन्होंने लिखवाया हुआ। दूसरा भी कभी सोचा कि अगर उस दिन ना बख्शी हुई तो क्या होगा, अगर उस दिन अल्लाह ताला ने पूछ लिया तो क्या होगा, अगर उस दिन पकड़ हो गई तो क्या होगा। ज़ाहिर है जब शैतान ने बता दिया कि तुम तो बड़े नेक इंसान हो, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, देखो फलान तो ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, तुम तो ये भी करती हो, तो फिर फिक्र किस बात की रह जाएगी। देखो तुम कितनी नमाजी हो, देखो एक छोटा सा हिजाब तुमने भी सर पे लगा ही लिया है, चाहे उसमें से आधे बाल बाहर निकल ही रहे हैं, चाहे टाइट सा अबाया भी पहन लिया, पहना तो है, चाहे झिलमिलाता हुआ अबाया पहन के चल रही हो, वह पहन तो लिया ना तुमने, कई लोग तो वो भी नहीं पहनते, देखो ना तुम उनसे तो अच्छी हो, क्या फर्क पड़ता है। कईयों को तो यही धोखा दे दिया, नमाज पढ़ने से भी क्या फर्क पड़ता है, कोई अल्लाह को तुम्हारी नमाजों की जरूरत है। तो शैतान इस तरह वरगलाता है, हर एक को उसके मुताबिक बात करता है ताकि कोई भी नेकी तरफ आ ही ना सके, कोई भी अपनी तैयारी कर ही ना सके, बस उसको मुतमईन कर देता है, जितने पे हो ना इतनी काफी है, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, उनका ये ख्याल होता है कि अल्लाह ताला ने बस हज उमरे पे बुला लिया ना तो हम बख्शे ही गए हैं तो बुलाया, अल्लाह ने कबूल किया ही है तो बुलाया। तो मैंने कहा वो हदीस तो फिर सारी फिर कभी सुनी होती तो पता चलता कि वो आदमी है पूरा गंदा बाल है, ऐसे है वैसे, इतना बेचारा दूर से आया मुसाफिर है, अल्लाह ताला से दुआएं मांगता उसकी दुआ नहीं कबूल होती, उसकी कोई दुआ नहीं कबूल हो रही, तो उसका हराम माल है, हराम ये है, कोई रीज़न बना ना जिसकी वजह से नहीं कबूल हुआ। मैं इत्तेफाक हुआ कि जब तवाफ कर रहे थे तो एक बेचारी औरत बिल्कुल यानी उसने मेरे साथ ही चल रही थी वो कोई, तो उसने कहा कि हाय हाय मैं गिरने लगी हूँ, हाय मैं गिरने, तो मैंने एकदम उसको पकड़ा, पानी वगैरह उसको दिया, साथियों ने सारों ने हम सारे उसके इर्द गिर्द हो गए। तो जब उसने पानी पिया ना, यकीन करें मुझे अभी भी उसकी आवाज़ मेरे खानों के अंदर गूंजती है, तो उसने एकदम तड़प के कहा ना, ओ अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, ओ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इतनी उसने तड़प के कहा कि मेरे भी मुँह से एकदम निकला अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, इतनी यानी उसके अंदर इतनी तड़प थी ना, वो पता नहीं कौन सा लम्हा हो इंसान ऐसे तड़प के दुआ मांगे और अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो किसी ने कहा वो अल्लाह ने तुझे माफ कर ही दिया जो यहाँ बुलाया, उसी वक्त उसने कहना बंद कर दिया। तो हमें बड़ी खुशफहमियां होती हैं, बड़ी खुशफहमियां हमने दिमागों के अंदर बनाया ना, ओ भाई हम बख्शे बख्शाए हैं, जब हम यहाँ पे पहुंच गए तो सारे माफ ही किया हुआ, कबूल किया ही हुआ जो यहाँ पे बुलाया। जबकि कुरान हमें कहता है अल्लाह अकबर कि वो तो नेकियां करके भी, जो अल्लाह के प्यारे हैं वो नेकियां करके भी डरते रहते हैं। सूरह मोमिनून की कई दफा आपको सुनाई है, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था ना आपसे सलम से कि ये कौन लोग हैं जो डरते रहते हैं, ये क्या कोई बुराइयां करने वाले हैं, आपने फरमाया नहीं ये नेकी करके डरते हैं। हम तो नेकी कर ले तो हम कहते हैं हम तो पहले ही बख्शे हुए हैं, जो नेकी की तौफीक अल्लाह ने इसीलिए तो हमें दे दी, आखिर हमें यहाँ पे हज उमरे पे बुलाया है तो हमें कुछ अच्छा समझा ही होगा बुलाया, तो पहले ही हमारे दिमाग में तो ये आ गया हमने क्या बख्शिश मांगनी है, हमने क्या कबूलियत की। अल्लाह हमारे असलाफ तो सारी जिंदगी मांगा करते थे अल्लाह हमारे इस हज को हमारे अमालनामे में कायम रखना, हम सोचते हैं कबूल हुआ ही है तो फिर है ना। अल्लाह अकबर, तो शैतान ना इंसान को कहां कहां से धोखा देता है, कहाँ कहाँ से धोखा देता है। इंसान ये कहता रहता है अम्ब बड़ा डर लगता है, ये बड़ा डर लगता है, बड़े गुनाहगार है, वो गुनाहगार है डर लगता है, तो फिर उसके बाद जिंदगी में क्या किया चेंज, कुछ भी नहीं, तो किस चीज का डर लगता है भाई। शैतान यही कहता है, वो तो उसने खुद भी कहा इन्नी अखाफुल्लाह, वो कुरान में आता है, वो कहता मैं तो डरता हूँ अल्लाह से, तो वो डरता क्या डरता है वो, तो इसी तरह वो हमें क्या ला देता है, मैं तो बड़ी डरती हूँ जी। अल्लाह अकबर, फिर इतना इंसान को धोखा देता है कि देखो दीन तो इतना आसान है ना, इन मौलवियों ने तो ऐसे ही इतना डराया हुआ, बस इतना आसानी से हो सके कर लो। दीन क्या है, किसी को नाराज नहीं करना तुमने, देखो किसी का दिल नहीं तोड़ना, सबको खुश रखो, यही तो दीन है, दीन है ही ये, क्यों हम किसी की नाराजगी मोल लें, सबकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। अच्छा अगर यही था दीन तो फिर अंबिया ने तो खामखाई लोगों की मुखालफत मोल ली, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते, उन्होंने क्यों नाराजगियां ले ली, उन्होंने क्यों दुश्मनियां ले ली, वो भी सबको खुश करते रहते हैं, लेकिन हमने अल्लाह का हुक्म तोड़ के लोगों को खुश करना है और कहना नहीं किसी को नाराज तो नहीं ना कर सकते, लेकिन इनके हकूक है ना हमारे ऊपर, रिश्तेदारों के भी हकूक है, हस्बैंड के भी हकूक है, अल्लाह का हुक्म टूटता रहे, इनके हकूक पूरे हो जाए, अल्लाह का हक बढ़ा है कि इनके हक बढ़े हैं, ये समझ नहीं आती बात। दीन आसान है, देखो शैतान, हाँ दीन आसान है, लेकिन उसके लिए जो अमल करे, ये नहीं है कि दीन आसान का होने का मतलब ये है कि कुछ भी ना करो, दीन आसान होने का मतलब ये है कि अपनी कन्वीनियंस देखो, हम भी नेकी भी पिक एंड चूज करके करते हैं, जो मुझे अच्छी लगती है आसान लगती ना वो कर ली, जो नहीं आसान लगती ना, जहां पे कुछ लोगों को नमाज पढ़नी आसान लगती है, नमाज पढ़ने पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं है, कुछ लोगों को रोजे रखने आसान लगते हैं लेकिन सच बोलने का कोई ख्याल नहीं, कुछ लोगों को अब रिश्ते निभाने का ख्याल होता है लेकिन शादी ब्याहों के ऊपर जो रिश्ते निभाने की बात आती है या उसके जो रस्म और रिवाज की बात आती है वो अपनी मर्जियों के साथ होते हैं। जहां पर हमें लगता है ना कि भाई यहां पर मैं चल सकती हूँ, ये ईजी है, ये इसके अंदर मुझे थोड़ी पजीजाई भी मिल जाएगी, लोगों की थोड़ी तारीफ, वो करने को बहुत तैयार है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुश्किल होगी, यहाँ पे कोई लोगों की नाराजगी होगी, यहाँ पे कोई मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी लोगों के अंदर, यहाँ पे मेरी कोई तारीफें भी नहीं होंगी, यहाँ पे लोगों की तरफ से पता नहीं क्या बातें ना सुननी पड़ जाए, वहां पे तो सारा हमारा दीन जो है ना हम उसको खुदाफिस कर लेते हैं। आप देख लें शादी ब्याह पे क्या होता है, किसी ने मुझे यही कहा कि ज़्यादा आप इतना तो बताती हैं लेकिन आप देख लें कि वही आपके स्टूडेंट है शादी ब्याहों पे वो क्या कर रहे थे, अब क्या कहें, हमने तो सहूलत अपनी देखनी ना भाई, सहूलत से जितना दीन हो सकता है हम उतना ही करेंगे, भाई सहूलत से ज्यादा नहीं हम कर सकते, उससे ज्यादा हम इनकन्वीनियंट नहीं अपने आप को कर सकते, कन्वीनियंस जहां पे है बस, यहां पे ज्यादा कुछ करना ना पड़े, ना अपनी मर्जी को मारना पड़े ज्यादा, बस थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा खा लिया बस, बाकी सारा जो है ना नहीं। इसी तरह कुछ लोगों को शैतान ने ये बात सुझाई भी है ना कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कुरान पढ़ो ना, किसी ने कहा मैं तो खुद ही पढ़ती हूँ, मुझे नहीं किसी की जरूरत है कि कोई मुझे पढ़ाए, और फिर इसीलिए ठोकर खाते हैं, इसीलिए खुद ही उसमें से पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا